अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जो मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहकर अपने मन तथा पांचों इंद्रियों को ठीक से जीत लेता है वह उस राजा के तुल्य है जो अपने किले यानी दुर्ग में रहकर अपने बलशाली शत्रुओं को पराजित करता है। गृहस्थाश्रम में प्रशिक्षित होकर तथा कामेच्छाओं को क्षीण करके वह बिना किसी भय के कहीं भी घूम सकता है। तात्पर्य, चार वर्णों तथा चार आश्रमों की वैदिक प्रणाली अत्यंत वैज्ञानिक है और इसका एकमात्र उद्देश्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पूर्व विद्यार्थी को जितेंद्रिय बनने की शिक्षा दी जाती है। ऐसे वयस्क विद्यार्थी को ही गृहस्थ बनने की अनुमति प्रदान की जाती है और चूंकि इसके पूर्व उसे इंद्रियों को जीतने की शिक्षा दी जा चुकी है, इसलिए जो ही वह तरुणावस्था की तरंगे समाप्त कर लेता है वह 50 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त कर लेता है तो वह गृहस्थ जीवन का त्याग करके वानप्रस्थी बन जाता है। इसके पश्चात और आगे शिक्षित होकर वह संन्यास ग्रहण करता है, तब वह पूर्ण विद्वान तथा विरक्त पुरुष होता है और भौतिक इच्छाओं से आकृष्ट हुए बिना वह कहीं भी घूम सकता है। इंद्रियों को प्रबल शत्रु माना जाता है। जिस प्रकार से सुदृढ़ दुर्ग में स्थित राजा प्रबल शत्रुओं को जीत सकता है, उसी प्रकार से गृहस्थाश्रम में रहकर भी एक गृहस्थ अपनी युवावस्था की विषय वासनाओं को जीत सकता है और वानप्रस्थ तथा संन्यास ग्रहण करने पर अत्यंत अभय निशंक रहता है। ओम अज्ञान निरंधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रियव्रत महाराज का प्रकरण चल रहा है। ब्रह्मा जी उसको गृहस्थ में आने के लिए और ये जितने श्लोक हैं उसमें बता रहे हैं कि तुम गृहस्थ में आ जाओ, लेकिन प्रियव्रत महाराज गृहस्थ में आना नहीं चाहते थे। वे नारद जी के उपदेश के कारण वे विरक्त हो गए थे, इसलिए भगवान के भजन में वे लगे हुए थे। तो उसी सीरियल में कंटिन्यूअस में ब्रह्मा जी के ये वचन है कि यपद सपत्नान विजिगीष माणो ग्रहेशु निर्विश्य। जो घर गृहस्थी में निर्विश्य माने प्रवेश कर जाता है ऐसा व्यक्ति और जिसने ये षट सपत्नान छह पत्नियों को, षट माने छह और सह पत्नान माने पत्नियों को, कौन सी है छह पत्नियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां और एक मन, इनको जो विजिगीष माणो जीतने का प्रयत्न करता है या जीत लेता है तो उसकी स्थिति ऐसी है कि अत्यति दुर्गाश्रित उर्जितारिन। जैसे दुर्ग में एक कठिन बहुत बड़ा किला है उसमें राजा बैठा हुआ है और वह राजा अत्यति जीत लेता है, किसको, उर्जितारिन प्रबल शत्रुओं को, बाहर नहीं आता है, दुर्ग में बैठे बैठे जीत लेता है। उसी प्रकार गृहस्थ में रह करके भी अपने इंद्रियों को जीत लेता है, और जीत करके क्या करता है, क्षीणेषु कामम, विषय भोग की विषय वासनाओं को उसकी समाप्त हो जाती है। तब विचरे विपश्चित है, तब किधर भी विचरण कर सकता है, उसको कुछ भी विपश्चित है, उसको कुछ भी बाधा नहीं आती है, क्योंकि उसको इतने ट्रेनिंग मिल चुकी है इंद्रियों को कंट्रोल करने की कि फिर उसको कुछ भी तकलीफ नहीं आती है। तो यहां प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यही चीजें लिखते हैं कि जो ये चार वर्ण है, हमारे चार आश्रम है, ये किस लिए है। बोलिए, बड़ा साइंटिफिक वे है इनका, इनको फॉलो अप करने का। इसका मेन उद्देश्य है सेंस ग्रेटिफिकेशन से विरक्त होना, हमारी इंद्रियों की तृप्ति पर, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। इसलिए गृहस्थाश्रम और वर्णाश्रम बनाए गए हैं। तो गृहस्थाश्रम में पहले विद्यार्थी को यह शिक्षा दी जाती है कि वह ब्रह्मचर्य आश्रम में आए। जब वह ब्रह्मचर्य आश्रम में आ जाता है तो उसको इंद्रियों पर किस प्रकार कंट्रोल करना यह सिखाया जाता है, और तब ऐसे विद्यार्थी को यदि वह चाहता है तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। यदि वह नहीं चाहता है तो वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी लास्ट तक रह सकता है, लेकिन यदि वह चाहता है तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश वह कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने इंद्रियों को जीतने का प्रयास किया है, ऐसा व्यक्ति यदि गृहस्थाश्रम में आता है तो वह इंद्रियों में लिप्त नहीं होता है, वह इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है। और तब 50 वर्ष की जब आयु आ जाती है, यहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि तरुणावस्था की तरंगे समाप्त हो जाती हैं, माने जब जवानी समाप्त हो जाती है तब वह क्या करता है, वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेता है, और फिर वानप्रस्थ आश्रम में फिर वह और जैसे जैसे प्रबुद्ध ज्ञानमय होता है वह संन्यास ग्रहण कर लेता है। वानप्रस्थ आश्रम में स्त्री को रख सकता है व्यक्ति, लेकिन उसके साथ स्त्री संग नहीं कर सकता है, भोग नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 50 वर्ष की आयु के बाद किसी को भी स्त्री संग नहीं करना चाहिए। तो ऐसा विद्वान पुरुष जो विरक्त हो जाता है वह अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है, उसी को यहां पे बोलते हैं क्षीणेषु कामम, उसकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। ये कामनाएं कैसी हैं, ये कामनाएं जीती जनी जा सकती जल्दी से, जैसे एक समुद्र है तो कामनाएं समुद्र के समान है। अब हम उसकी पूर्ति कितने करते हैं, सीख एक तुमका एक लोटे भर जल में आप डुबो करके उसको वापस निकाल करके उसको छिड़को, तो छिड़केंगे तो कई बूंद बन जाते हैं, तो जो एक बूंद बना उसको सीकर कहते हैं। तो सीकर के समान हम कामनाओं की पूर्ति करते हैं, जबकि कामनाएं होती हैं समुद्र के समान। पर यदि उसको शुरू में ब्रह्मचर्य आश्रम से ट्रेनिंग दी जाती है तो वह इसको भी जीत सकता है, क्योंकि इंद्रियां ही मनुष्य की प्रबल शत्रु मानी गई है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो गृहस्थ आश्रम और युवावस्था, इसमें विषय वासनाओं को जो जीत लेता है वह फिर वानप्रस्थ और संन्यास ग्रहण करता है, और फिर उसको किधर भी भय नहीं रहता है, किधर भी वह विचरण कर सकता है, उसको माया फिर पकड़ नहीं सकती है। इसके पहले वाले श्लोक में भी प्रभुपाद जी ने कहा है कि भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतस्य आशय षट् सपत्नः। यदि कोई जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, जिसकी मन कंट्रोल में नहीं है, सह षट् सपत्नः, छह पत्नियां इनको छह पत्नियां कहा गया है। तो ये पत्नियां जिसके कंट्रोल में नहीं है, यदि वो वन में भी चला जाता है तो उसको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वहां पर भी वह इंद्रियों के कंट्रोल में रहेगा। और उसके अगेंस्ट में यदि कोई गृहस्थ है और गृहस्थी में रहते हुए भी जितेंद्रिय उसकी इंद्रियां कंट्रोल में है, तो गृहस्थ समय किम करोति अवध्यम, अवध्यम माने उसका कुछ भी नुकसान नहीं होता है। वह गृहस्थ में रहकर भी और विरक्त रहता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी यहां पे कोट करते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, जैसे कि ग्रहे वा वने थाके हा गौरंग बले ठाके, यानी कोई वन में रहे या घर में रहे, यदि वह श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में लगा हुआ है तो वह मुक्त है, लिबरेटेड सोल, वह मुक्त है। तो इंद्रियों को वश में रखना ये हमारा सबसे बड़ा पहला कर्तव्य है। तो इसको कैसे रखें? इंद्रियां जल्दी से वश में नहीं आती हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करना यही एकमात्र उपाय है इंद्रियों को कंट्रोल में करना। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भक्ति का अर्थ है कि ईश्वर की सेवा में लगना, विशुद्ध इंद्रियों को लगाना। तो गृहस्थाश्रम ऐसे आत्मविधि पुरुष को किसी प्रकार की भी हानि नहीं पहुंचा सकता है जो विजितेंद्रिय है और जो कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है। मनसा वाचा कर्मणा, रूप गोस्वामी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में जो लग जाता है वह मुक्त पुरुष है, वह लिबरेटेड सोल है। ये ज्ञानेंद्रियां, ये जो पांच इंद्रियां अभी जो बताई गई हैं, पांच इंद्रियां कौन कौन सी है? नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियां की तुलना सर्प के समान है, विषैले सर्प। तो विषैले प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, ये विषैले सर्प के समान है जो कभी भी हमको काट सकती हैं। लेकिन यदि उस सर्प के यदि दांत निकाल लो तो वह सर्प भयावह नहीं रहता है, फिर वह सर्प से कुछ भी डर नहीं रहता है। इसी प्रकार इन इंद्रियों को जब कृष्ण की भक्ति में लगा दोगे, कृष्ण की सेवा में लगा दोगे, तो फिर इन इंद्रियों से कुछ भी भय नहीं रहता है। बोले मुक्त पुरुष, इसके पहले वाला एक श्लोक में मुक्त पुरुष को भी अपने कर्मों के अनुसार और जन्म लेना पड़ता है। लेकिन बद्ध पुरुष और मुक्त पुरुष में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि मुक्त पुरुष ये सोचता रहता है कि अब मैं इस प्रकार के कार्य न करूं जिससे कि मेरा फिर से जन्म मृत्यु का बंधन वापस लग जाए। वह इनसे गुणान शब्द आया है उसके अंदर, तो गुणान मतलब विषय वासना, विषय वासनाओं से वह दूर रहता है ताकि वह फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में वह नहीं फंस जाए। अब हम किस प्रकार कंट्रोल करें मन को और इंद्रियों को? तो अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया था भगवान से कि मन को किस प्रकार कंट्रोल किया जाए। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्धनम तच्छाहम निग्रहम मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है, और चंचल ये नहीं है हे कृष्ण प्रमाथि, प्रमाथि मने ये बड़ा विचलित करने वाला है, उच्छृंखल है, कोई बात मानता नहीं है ये, और बलवान है, बहुत बलवान है, और दृढ़म ये हठीला है, ये मन किसी बात को नहीं मानता है। तो इसको किस प्रकार कंट्रोल करें? बोले जिस प्रकार वायु को कंट्रोल नहीं किया जा सकता वायुरिव सुदुष्करम, उसी प्रकार इस मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। जबकि मन बुद्धि के अंडर में रहता है, मन बुद्धि द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन यह बुद्धि के भी आज्ञा को नहीं मानता है। कठोपनिषद का एक श्लोक है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम् भुक्तेहु भुक्ते आहु मनीषिण। आत्मानं रथिनम्, इस रथ पर, रथ क्या है? हमारा शरीर। इस रथ पर आत्मा विराजमान है और बुद्धि इसका सारथी है। बुद्धिम तो सारथिम बुद्धि, बुद्धिम इसका सारथी है और मन पद्रमेव च इसका चालक है और इंद्रियां इंद्रियाणि हयान हयाना इंद्रियां इसके घोड़े हैं। तो इन इंद्रियों की और मन की संगति से मनुष्य सुख और दुख भोगता है। यद्यपि बुद्धि के अंदर में कंट्रोल में रहना चाहिए मन को, लेकिन यह बुद्धि के अंदर में कंट्रोल में नहीं रहता है। तो इसलिए इस उच्छृंखल मन को किस प्रकार कंट्रोल किया जाए? तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करता है, दीन भाव से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दीन भाव से इस महामंत्र का जो जाप करता है वह इस मन को कंट्रोल कर सकता है। ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो श्री भगवान वाच भगवान ने भी यही कहा कि हे अर्जुन, तुम बोलता बिल्कुल ठीक बात है कि असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यास अनुपकौनते वैराग्येण च गृह्यते। निश्चित रूप से इस मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। दुर्निग्रहम, ये चलायमान है, इस मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। लेकिन दो चीजों से इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम, एक तो अभ्यास से और एक वैराग्य से। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इसको बताया कि ये अभ्यास क्या है और ये वैराग्य क्या है, किस प्रकार मन को आप कंट्रोल करेंगे। तो अभ्यास है कि निरंतर कृष्ण के लीलाओं का श्रवण करना, यह है अभ्यास। निरंतर भागवत श्रवण करना, यह है अभ्यास। ऐसा अभ्यास जब यदि कर लेता है जीव, तो फिर उन चीजों से उसको विरक्ति हो जाती है जो चीजें उसको कृष्ण से दूर ले जाते हैं। फिर उसको मन कंट्रोल हो जाता है और मन में वैराग्य आ जाता है। बोले वैराग्य क्या है? बोले इस मटेरियल वर्ल्ड से दूर होना, यही वैराग्य है। तो ये वैराग्य उसको आ जाता है। ये आया किससे? श्रवण, कृष्ण लीलाओं का श्रवण, श्रीमद् भागवत का श्रवण। तो ऐसा व्यक्ति जो निरंतर कृष्ण लीलाओं का श्रवण करता है, तो ये उन्मत्त मन का, उन्मत्त मन जो पागल है हो गया है, कोई दवाई काम नहीं करती है, ऐसे मन का ये एक उपाय है। कपिल भगवान भी देवहूति माता को इसी प्रकार का उपदेश देते हैं। 4:25-26, भक्त्यापमान जात विराग इंद्रियात दृष्ट श्रुतान मद्र चुनानु चनानु चिंतया चित्तस्य यतो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते रुज्भि योग मार्गे। भक्त्या, कृष्ण की भक्ति से पुमान माने मनुष्य और जात विराग, उसमें विराग जात उत्पन्न हो जाता है। कृष्ण की भक्ति से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। किससे? इंद्रियाद, इंद्रियों से, इंद्रियों से कृष्ण भक्ति से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, माने इंद्रियां उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। क्या इंद्रियां? दृष्ट श्रुत, आंखें कान, ये जो मैंने 5 ज्ञान इंद्रियां बताई, ये उसके कंट्रोल में आ जाती है। और फिर मद रचना अनुचिंतया, और फिर वह मेरी लीलाओं के चिंतन में रहता है। मद रचना अनुचिंतया, चित्त से यत् ग्रहण योग युक्त, योग युक्त शब्द जो आया इसके अंदर, मतलब ऐसा भक्त जो भक्तों के संगति में कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करके और कृष्ण के चरण कमल में समर्पित हो जाता है और कृष्ण की भक्ति में निरंतर लगा रहता है, उसको योग युक्त कहते हैं। तो ऐसा योग युक्त पुरुष का मन और इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। ये भक्ति मार्ग कैसा है? बोली यजुभि, बड़ा सरल मार्ग है ये, यजुभि योग मार्ग, बड़ा सरल मार्ग है, सीधा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, भागवत श्रवण करो, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करो, भगवान के दर्शन करो, साधु संग करो, बड़ा सरल उपाय ये जो भी योग मार्ग है। अनेक शास्त्रों में ये शिक्षा दी जाती है कि पुण्य कर्म करो, यानी हॉस्पिटल्स बनवा लो, स्कूल्स बनवा लो, ये पुण्य कर्म। तो इन पुण्य कर्मों से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति मिलती है इस लोक में भी और स्वर्गलोक में भी या अगले जन्म में भी उसको इंद्रिय तृप्ति मिलती है। किंतु एक भक्त भक्तों की संगति में रह करके कृष्ण का भजन करना चाहता है, वह इंद्रिय तृप्ति वह सुखों को नहीं चाहता है। वह क्या श्रवण करता है, क्या वह मन में स्मरण करता है, बोले किस प्रकार कृष्ण ने इस संसार को रचा, किस प्रकार कृष्ण इस संसार को पालन कर रहे हैं, किस प्रकार वे इसका विनाश कर रहे हैं, किस प्रकार भगवान ने गोवर्धन धारण किया, किस प्रकार काली नाग पर नृत्य कर रहे हैं, इन लीलाओं में निरंतर वह लगा रहता है। तो ऐसा जो भक्त है जो निरंतर कृष्ण की लीलाओं को सुनता रहता है तो उसका फल क्या होता है कि वह इस संसार में भी और स्वर्ग में भी सुख की प्राप्ति करने की इच्छा उसकी नहीं रहती है, अरुचि उसकी रुचि खत्म हो जाती है इंद्रिय तृप्ति की, इंद्रियों को भोगने की। प्रतिक्षण ऐसे भक्त की एकमात्र इच्छा होती है, कपिल भगवान कहते हैं कि उन्हें भगवान की साक्षात संगति प्राप्त हो, उन्हें ये सुख जो है मटेरियल वर्ल्ड का सुख कैसा है, बोले क्षणिक नाशवान है ये सुख, तो उसकी इच्छा इस सुख को प्राप्त करने के लिए नहीं रहती। इसलिए ऐसा जो योग युक्त भक्त होता है वह अपने मन को और अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। इसी के आगे वाले श्लोक में कपिल भगवान कहते हैं 4-5-27, असेवायम प्रकृतेर गुणान ज्ञाने न वैराग्य विजृंभितेन योगे न मय्यर्पित या च भक्त्या माम प्रत्यगात्मान मिहावरुंधे। जो असेवायम जो सेवन नहीं करता है, किसका सेवन नहीं करता है, प्रकृते गुणान जो प्रकृति के गुणों का सेवन नहीं करता है, और क्या करता है फिर वह, ज्ञाने न वैराग्य न, ज्ञान से और वैराग्य से। ज्ञान क्या है, कृष्ण ही भगवान है इसको जान लेना, यही ज्ञान है। तो ज्ञाने न और वैराग्य न, जब कृष्ण की भक्ति करता है तो उसको वैराग्य हो जाता है। तो इनसे विजृंभितेन वो मय्यर्पित मुझको अपने चरण मेरे चरण कमलों में वह शरण ग्रहण कर लेता है, अपने जितने कर्म है उनको मुझको समर्पित कर देता है। जब भक्ता भक्ति से वह मेरे चरण कमल की शरण ग्रहण करता है, ऐसा जो भक्त है जिसको पिछले श्लोक में योग युक्त भक्त कहा गया है, ऐसा भक्त इसी देह में कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, उसको दूसरा देह प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। माम प्रत्यगात आत्मानम इह अवरुंधे, इह माने इसी शरीर में, अवरुंध माने प्राप्त करता है, प्रत्यगात किसको, मुझको, मुझ परमेश्वर को वह प्राप्त करता है, उसको दूसरा जन्म धारण नहीं करना पड़ता है। तो जो मनुष्य नौ विधियां हैं भक्ति करने की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन प्रार्थना आदि आदि, ये इनमें से कोई एक अपना सकता है, कोई दो अपना सकता है, या कोई सभी अपना सकता है। तो यदि वह इनमें लगा रहता है तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहता है कि उस व्यक्ति को फिर इंद्रियों की सेवा के लिए समय ही नहीं मिलता है, वो तो निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति में लगा है, जो ये पुण्य कर्मों के कार्यों में नहीं लगा रहता है, क्योंकि ज्यादातर जो इंद्रिय जित व्यक्ति नहीं है वह क्या करता है, ये पुण्य कार्यों में लग जाता है, ताकि उसको अस्पताल बनवाया, उसको स्कूल्स बनवाए, उनसे उसको इंद्रिय तृप्ति के साधन मिले, यहां पर भी स्वर्ग में भी या अपने अगले जन्म में भी। किंतु भक्ति इस इंद्रिय तृप्ति के घेरे के बाहर है, भक्त को इन इंद्रिय तृप्तियों को पुण्य कार्यों से कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये एक कृष्ण भक्ति बड़े अंदाजे में नहीं की जा सकती है, ये ज्ञान और वैराग्य इनसे जो की जाती है। तो ऐसा योगाभ्यास में जो भक्त स्थिर रहता है उसको इसी जीवन में मुक्ति मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति जो ऐसे कर्म करता है वह भगवान के पास पहुंचता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि श्रवण किससे करना चाहिए, सिद्ध पुरुष सिद्ध भक्त उससे श्रवण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से यदि श्रवण करेंगे तो निश्चित इसी जीवन में आप कृष्ण को प्राप्त कर सकेंगे। प्रहलाद महाराज बड़ा अच्छा पिक्चर इन गृहस्थियों को ये लिखे हैं, दो श्लोक हैं कि धुरा पुरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति। 7-6-8 धुरा पुरेण कामेन, जैसा मैंने बताया कि एक कामेन माने इच्छाएं, धुरा पुरेण बड़ी डिफिकल्ट है इनको पूर्ति करना। समुद्र और सिंह का मैंने शिखर का उदाहरण दिया, इन कामनाओं को पूर्ति करना बड़ा डिफिकल्ट है। और मोह में से बलिए सा, बलवान मोह है जिसका अपने परिवार के प्रति, ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छाएं अतृप्त हैं, जिसने अपने मोह से अपने परिवार के प्रति आसक्त हो गया, तो क्या होता है, शेषम ग्रहेशु आसक्तस्य, जो शेष जीवन उसका रहता है उसमें वह आसक्त होता जाता है परिवार में और अपने इंद्रियों के भोगों में। प्रमत्त, ऐसा व्यक्ति पागल है। अपयाति ही, अपना जीवन अपयाति माने नष्ट कर देता है, वह कृष्ण की भक्ति में नहीं लगता है, वह नष्ट कर देता है, व्यर्थ बिता देता है। तो पाद्य तात्पर्य में 100 वर्षों की लेखा जोखा बताए हैं कि मनुष्य का जैसे 100 वर्ष आयु गिनी जाए, होती नहीं है आजकल कलयुग में, समझ लो 100 वर्ष की आयु है, तो 50 वर्ष तो सोने में चले जाते हैं, 20 वर्ष बचपन में और किशोरावस्था में चले जाते हैं, और 20 वर्ष बुढ़ापा और रोग में चले जाते हैं, तो बाकी जो 10 वर्ष बचे उसमें अपने युवावस्था में वह इंद्रिय तृप्ति में लगा देता है। समझ लो ये 50-20-20 में से थोड़ा थोड़ा अपन काट भी लें और 20 वर्ष और निकाल लें, समझ लो उसके पास जवानी के लिए 30 वर्ष बच गया। तो 30 वर्षों में वो करता क्या है, केवल अपने इंद्रिय तृप्ति भोगों में लगा रहता है, स्त्री संग करता है, वह कभी कृष्ण की भक्ति करता ही नहीं है, कृष्ण की भक्ति के लिए उसके पास अवकाश ही नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले ब्रह्मचारी बनना चाहिए, ब्रह्मचारी की शिक्षा उसको दी जानी चाहिए, क्योंकि जब वह ब्रह्मचारी ही बन जाएगा तो इंद्रियों को किस प्रकार कंट्रोल करना वह सीख जाएगा, और जब इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख जाएगा तब उसको गृहस्थाश्रम में आने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर वे जो 30 वर्ष भी उसके चले गए थे वे नहीं जाते हैं, वो उनको उस पीरियड में भी वह कृष्ण भक्ति में और वह लीन रहता है। और फिर टाइम आ जाए 50 वर्ष वानप्रस्थ और फिर धीरे धीरे संन्यास, ये ग्रहण कर लेना चाहिए। जो लोग जीवन के प्रारंभ से ही इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते हैं वे अजितेंद्रिय कहलाते हैं, अजितेंद्रिय, उन्हें इंद्रिय तृप्ति के लिए ही प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में डॉक्टर्स बना दिया, इंजीनियर्स बना दिया, यहां पर भी ये सब क्यों, सर्विस अच्छी मिल जाए, कमाई हो जाए, पैसा आए, इंद्रिय तृप्ति में लग जाओ, शादी बना लो, पूरा जीवन इसी में समाप्त हो गया। तो 100 वर्ष की आयु उसकी इसी प्रकार बिना तप के बिना भक्ति के और चली जाती है। तो यदि ऐसा जो व्यक्ति है मरने के बाद 100 वर्ष के मरने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि उसको मानव देह नहीं मिले, ऐसे व्यक्ति को कुकर सुकर कुत्ता बिल्ली इसकी देह उसको मिलेगी। इसलिए कामेच्छाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को और इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यही हमको कष्ट देने वाली है, इनसे ही हमको दुख होता है। तो क्या करना चाहिए, तो अगले श्लोक में वो बताते हैं प्रहलाद महाराज, को ग्रहेषु पुमान सत्तम आत्मानम अजितेन्द्रिय स्नेह पाशे दृढ़ बद्धम उत्सहेता विमोचितुम। ऐसा कौन गृहस्थ व्यक्ति होगा जो को ग्रहेशु, माने कौन गृहस्थ व्यक्ति होगा तुमान माने मनुष्य, जो आसक्तम, जो अपने परिवार में आसक्त है, अपने पुत्र बच्चों में आसक्त है, और अजितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति विमोचितुम वह अपने को मुक्त कर सके, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बोले बोले ऐसा व्यक्ति स्नेह पाश दृढ़म, स्नेह पाश के बंधन में वह डूबा रहता है, और यह बंधन कैसा है? दृढ़म। कपिल भगवान कहते हैं देवोति माता जी को कि ये अपना बंधन, ये आसक्ति कैसी है परिवार की? बोले एक लोहे की मोटी जंजीर, उसको यदि तोड़ना चाहे तो टूटती है क्या? नहीं टूटती है जल्दी सी। इसी प्रकार स्नेह पाश, पाश कहा गया यहां पे, ये जंजीर, ये बंधन है, ये दृढ़म है, इसको वह छोड़ नहीं सकता। किसके प्रति बंधन होता है? बोले पत्नी, बच्चे, अन्य संबंधी, इनके प्रति ही वो बंधन होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्लोक के कहते हैं कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बचपन से ही भक्ति में लग जाओ। कौमारे आचरित पाग्यो धर्मान भागवतान है। बचपन से ही भक्ति में लग जाना चाहिए, सब कार्यों को छोड़ करके कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए। ये धर्मान भागवतान क्या मतलब? मतलब ऐसे कार्य जो हमको कृष्ण को पकड़ा दे, कृष्ण की भक्ति में लगा दे, उसको धर्मान भागवतान। तो भगवान ने यही तो बताया है, बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब चीजों को छोड़कर मेरी शरण ग्रहण कर लो, तब तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम्हारे सब पापों को मैं समाप्त कर दूंगा। बोले हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है? हमारा वास्तविक कर्तव्य यह है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बारंबार जन्म लेते हैं, बारंबार मरते हैं, बारंबार बुढ़ापा आता है, बारंबार व्याधि रोग आता है, इनसे दूर होना चाहिए हमको। तो इसके लिए क्या करना? बोले भवबंधन समाप्त होगा तब यह समाप्त होगा, और भवबंधन समाप्त होने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले इस गृहस्थी को, गृहस्थ जीवन को, गृहस्थ जीवन से आदमी को मुक्त होना चाहिए, तब जाकर के वह इस भवबंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बोले गृहस्थ जीवन ये भौतिक आसक्ति का, हम क्यों गृहस्थ में आते हैं? इंद्रियों की तृप्ति के लिए। लाइसेंस मिल जाता है उसको समाज की तरफ से कि ठीक है तुम अब गृहस्थ बन गए, अब स्त्री सुख करो, भोगो भोगों को, एक लाइसेंस मिल जाता है हमको, इसके लिए गृहस्थ आश्रम में आते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए पहले गुरु के पास जाना चाहिए ब्रह्मचारी बनकर के, और जो गुरु ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरोहितम भागवत 7:12:1, यानी ब्रह्मचारी को प्रारंभ में यह शिक्षा दी जाती है कि तुम सब स्त्रियों को माता के रूप में देखो, और माता के रूप में देख करके हर गृह में जाकर के उनसे भिक्षा प्राप्त करो, और जो भिक्षा मिलती है वह फिर ला करके गुरु को समर्पित कर देता है। तो इस प्रकार उसको इंद्रियों को कंट्रोल करने की शिक्षा मिल जाती है, और संचय नहीं करना, जो कुछ मिला गुरु को दे दिया, संचय की इच्छा उसको नहीं रहती है। तो ऐसा व्यक्ति को फिर ये गृहस्थाश्रम में जाने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। जो ऐसा व्यक्ति गृहस्थाश्रम में चला जाता है तो फिर वह कंट्रोल्ड वे से, देखो सेक्स भी कंट्रोल्ड वे से करना चाहिए स्त्री के साथ में, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। जो ऐसा व्यक्ति जब करता है तो वह धीरे धीरे 50 वर्ष की आयु आ जाती है तो वह वानप्रस्थ ग्रहण कर लेता है और फिर वह संन्यास ग्रहण कर लेता है। बोले प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हित्वात्म पातम ग्रह अंधकूपम, ये ग्रह गृहस्थी कैसी है? ये अंधा कुआ है, अंधे कुएं में डूब जाओगे तो मर जाओगे, कोई सुनता नहीं है, कोई आवाज सुनता नहीं है कि निकालो निकालो, और सांप बिच्छू काटते रहते हैं वहां पे, न पानी रहता है न कुछ, और इसी प्रकार ये घर गृहस्थी है। इसको जब तक त्यागोगे नहीं तब तक बोले कृष्ण को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये आसक्ति किसकी है? जो जो अजितेंद्रिय है वह अपना घर में, अपने पत्नी में, अपने बच्चों में, इसी में, नौकर में, धन में, इसी में वह आसक्त रहता है। इसलिए बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए सब चीज छोड़ करके। बोले वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित है जने त्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। ये भागवत 1:2:7। कृष्ण की भगवत भक्ति करने से और तुरंत ही आशु तुरंत ही और हमको ये वैराग्य प्राप्त हो जाता है और ज्ञानम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो वैराग्य विद्या यानी अनासक्ति जीवन के प्रारंभ से ही जब भक्ति में लग जाता है जीव तो उसको वैराग्य जिंदगी भर रहता है। इसी को गोस्वामी कहते हैं जिनको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया हो। बिना गोस्वामी बने संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इंद्रिय भोग की प्रबल प्रवृत्ति ही ये भौतिक शरीर का कारण है। हमको बारंबार ये जो शरीर मिलता है वह इंद्रिय तृप्ति के कारण ही हमको यह शरीर मिलता है। तो इसलिए ज्ञान और विरक्ति से यह भौतिक आसक्ति भगवान की भक्ति से ये भौतिक आसक्ति समाप्त की जा सकती है। और इसी बात को ब्रह्मा जी अगले इस श्लोक के बाद में कहते हैं कि तुम तब्ज नाभ अंग्री सरोज कोश है दुर्गा श्रितो निर्जित षट सपत्न। इन 6 पत्नियों से तुम कैसे मुक्त होगे? बोले कृष्ण के चरण कमल की शरण प्राप्त करके और तुम उसको मुक्त हो सकते हो। जो प्रियव्रत महाराज को डर था कि मैं घर गृहस्थी में आसक्त हो जाऊंगा तो मेरी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगी मैं भोगों में लिप्त हो जाऊंगा, तो वे उनको आश्वासन देते हैं कि तुम गृहस्थी में आओ भंक्षे भोगान तुम भोगों को भोगो पुरुषार्थ दीष्टान तुमको भगवान ने आज्ञा दी है इस घर गृहस्थी में आने के लिए इसलिए तुम आओ प्रकृतिम भुजस्व तुम भोगों को भोगो। लेकिन कैसे? बोले विमुक्त संग है उनके आसक्ति नहीं रखो भोगों में परिवार में आसक्ति न रखते हुए भगवान का भजन करते हुए तुम चलते जाओ तुमको कुछ भी खराब नहीं होना है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा? To go down. Because they are not so much serious about devotion. Krishna bhakti, they must be serious. If they are serious, if they are repeatedly heard Bhagavat Krishna Leela, then there will this type of instance will not come. Jap, Bhagavad Jap. You must be serious in Bhagavad Jap. Sadhu Sang. You must be serious in Sadhu Sang. Not as a formality, but from his own heart, he must do all these formalities, these devotional activities. Then he will not fall down. He will do bhakti, he will leave the world without any attachment. He can live in grihastha ashram. He can live anywhere. He can live in brahmacharya, grihastha or sannyas anywhere. But if attachment will not be there then. Even to sannyasis, attachment is there. Suppose you go to any sannyasi, and if there are so many boxes in his ashram, what does that indicate? That he is attached to a sangraha, collection. This is not required. So this will come only after a pure devotion. It must be from his heart, no compulsion. That these are the timings, you must hear, you must learn. No. You must come and attend. Sincerity must be there.
हरे कृष्णा, जितना भी जीव भक्ति करके भगवत धाम जाता है, अगर उनको भगवान का क्लोज एसोसिएट बनने का है, ऐसा हो सकता है कि नहीं?
लिखा ना, अभी तो बताया कपिल भगवान बोलते हैं कि एक ही जन्म में तुम आ सकते हो, ऐसा तुमको भक्ति उस टाइप से करो, योग युक्त हो। भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि कृष्ण के लिवा सिवाय हमको कुछ भी नहीं दिखे, निरंतर केवल कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करो, निरंतर उनके चरणों में शरण ग्रहण करो, भगवान का जाप करो, साधु संग करो, भगवान का दर्शन करो निरंतर, और किसी में ध्यान जाए नहीं, तो इसी जन्म में भगवान का और सानिध्य मिल सकता है। इट पॉसिबल,
वो क्लोज एसोसिएट बन सकता कि नहीं?
मिल सकता, यस। उनको डिपेंड करता है कि किस प्रकार की ग्रेविटी है आपकी भक्ति की। हरे कृष्ण। ग्रंथ राशि मद भागवतम की।